12 अक्टूबर शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र का दावा, तुर्की की सैन्य कार्रवाई की वजह से सीरिया में 1,00,000 लोगों का पलायन।
The protection of civilians, humanitarian workers and civilian infrastructure in Syria's northeast is a growing concern.
भारत और चीन के बीच मामल्लपुरम में अनौपचारिक सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन। भारत के बाद नेपाल जाएंगे चीन के राष्ट्रपति। चर्चा होगी महाराष्ट्र में मराठा।
महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र एंटी दिल्ली ये आइडियोलॉजी वर्कआउट कर रहा है।
और हरियाणा में जाट राजनीति की।
देखिए, हरियाणा में जो भाजपा नेशनल सिक्योरिटी को लेके, कश्मीर के 370 को लेके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उत्तर सीरिया में तुर्की के हमले के बाद करीब 1,00,000 लोग पलायन कर चुके हैं। कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमला तेज होने से कई इलाकों में हालात और बिगड़ गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इन हमलों में दर्जनों कुर्द लड़ाके और करीब 17 नागरिकों की जान चली गई है। इनमें से 3 लोग एक कार बम धमाके में मारे गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और चीन के बीच व्यापार को लेकर चल रहा गतिरोध कम हो गया है। अमरीका ने चीन के साथ एक आंशिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अमरीका चीन के उत्पादों पर टैरिफ वृद्धि को फिलहाल स्थगित कर देगा। ये वृद्धि अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष काफी जटिल बातचीत के बाद एक शुरुआती समझौते पर पहुंचे हैं।
So we're very happy with it. We have great respect for China, great respect for President Xi, the Vice Premier. I want to just thank you very much for
हम इससे बहुत खुश हैं। हम चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत सम्मान करते हैं। ये ऐसा कुछ है जिसे दोनों देश शुरुआत से महत्वपूर्ण मानते थे, न सिर्फ चीन के लिए बल्कि अमरीका के लिए भी। इसलिए हमने एक जबरदस्त और जटिल बातचीत की जो दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी होने जा रही है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अमरीका ने सऊदी अरब की मदद के लिए हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजने की घोषणा की है। सऊदी अरब में पिछले महीने तेल कंपनी अरामको पर हुए हमले को देखते हुए ये सैन्य मदद भेजी जा रही है। अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने बताया कि सऊदी अरब भेजे जा रहे अतिरिक्त सुरक्षा बलों में लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रंस और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं।
Saudi Arabia is a long-standing security partner in the Middle East and has asked for additional support to supplement their own defenses and defend the international...
मध्य पूर्व में सऊदी अरब लंबे समय से हमारा रक्षा साझेदार रहा है और उसने अपने बचाव के लिए अतिरिक्त सहयोग की मांग की है। वहां लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए मैंने सऊदी अरब में सुरक्षा बल और रक्षा उपकरण भेजने का आदेश दिया है। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री मार्क एस्पर के शब्द। फेसबुक की नई वैश्विक क्रिप्टो क्यूरेंसी बनाने की परियोजना में 4 बड़ी ऑनलाइन भुगतान कंपनियां अलग हो गई हैं। इन कंपनियों में मास्टरकार्ड, वीज़ा, ईबे और स्ट्राइप शामिल हैं। इससे पहले पेपाल ने खुद को इस परियोजना से अलग कर लिया था। यूक्रेन में पूर्व अमरीकी राजदूत मारी योवानोविच ने अमरीकी संसद में कहा है कि उन्हें उन लोगों के निराधार दावों के आधार पर हटा दिया गया जिनके उद्देश्य खुद संदिग्ध थे। योवानोविच ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों द्वारा प्रचारित एक झूठी रिपोर्ट के आधार पर यूक्रेन से वापस बुला लिया गया था। उस रिपोर्ट में उन्हें राष्ट्रपति के प्रति निष्ठाहीन बताया गया था। योवानोविच की यह गवाही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच का हिस्सा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। साल 1965 में अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले सोवियत अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी लियोनोव का निधन हो गया है। वे 85 वर्ष के थे। मॉस्को के एक अस्पताल में शुक्रवार को उन्होंने आखिरी सांसें ली। वो लंबी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने लियोनोव के निधन को पूरे ग्रह के लिए क्षति बताया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि लियोनोव का साहस प्रेरणा देता है। अलेक्सी लियोनोव ने अंतरिक्षयान से बाहर निकलकर लगभग 16 फीट लंबे केबल की मदद से अंतरिक्ष में 12 मिनट तक चहलकदमी की थी। इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वालों से सीधी बातचीत करने की पेशकश की है। टीवी पर एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि लगातार 10 दिनों के प्रदर्शन के बाद देश में शांति की जरूरत है। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी, संदीप सोनी के साथ। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि तुर्की की सैन्य कार्रवाई की वजह से सीरिया में लगभग 1,00,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। मानवीय मदद पहुंचाने वाले समूहों का भी मानना है कि कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की की सैन्य कार्रवाई से प्रभावित होने वाले आम लोगों की संख्या बढ़ सकती है। इस कार्रवाई में अभी तक तुर्की का एक सैनिक और बड़ी संख्या में कुर्द लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सीरिया से लगभग 1,00,000 लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। इस इलाके में 3 दिन पहले कुर्द लड़ाकों के खिलाफ शुरू हुए तुर्की के हमलों में कम से कम 11 नागरिकों और दर्जनों कुर्द लड़ाकों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इन हालात को लेकर चिंता जताई है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गैर पेडरसन की प्रवक्ता जेनिफर फेंटन ने जिनेवा में कहा कि ये लड़ाई कई और निर्दोष जाने ले सकती है।
प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सीरियाज नॉर्थ ईस्ट।
सीरिया के उत्तर पूर्व इलाके में नागरिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बुनियादी ढांचे की रक्षा को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस इलाके में पहले ही मानवीय संकट की स्थिति बनी हुई थी, जो मौजूदा सैन्य अभियान के कारण और बढ़ गई है। ये थे संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की प्रवक्ता जेनिफर फेंटन के शब्द। हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों की आपत्ति के बावजूद तुर्की अपने फैसले पर बना हुआ है। उसका कहना है कि वो कुर्द लड़ाकों को हटाकर एक सेफ जोन तैयार करना चाहता है, जहां लाखों सीरियाई शरणार्थी भी रह सकेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने सैन्य अभियान रोकने से साफ मना कर दिया है।
Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Ben Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer
कुर्द लड़ाकों के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई को हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, भले ही सीरिया की सरकार को ये पसंद ना आए। हमें हर जगह से धमकियां मिल रही हैं कि इसे रोक दिया जाए, लेकिन कोई क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं रुकेंगे। रेचेप तैयप एर्दोगान ने इस्तांबुल में एक भाषण के दौरान ये बातें कही। तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर लगातार चेतावनियां मिल रही हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने इस हमले की निंदा की है। फ्रांस ने कहा है कि अगले हफ्ते होने वाले यूरोपीय संघ सम्मेलन में तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने भी यह घोषणा की थी कि वो तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पेश करेगी। हालांकि ब्रिटेन आर्थिक प्रतिबंधों के पक्ष में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटिश राजदूत कारन पियर्स ने कहा है कि सैन्य अभियान रुकना चाहिए, लेकिन इस वक्त वो प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करती। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन हमलों से कुर्द लड़ाकों के कमजोर होने और इस्लामिक स्टेट का खतरा बढ़ने की आशंका जताई है।
तुर्की की सैन्य कार्रवाई की वजह से सीरिया में 1,00,000 लोगों का पलायन हुआ है, रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। यात्रा के पहले दिन कल तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के नजदीक मामल्लपुरम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अनौपचारिक बातचीत हुई, जो आज भी जारी रहेगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके बाद नेपाल रवाना हो जाएंगे।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
भारत के दो राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां हर दिन तेज होती जा रही हैं। पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस बार के विधानसभा चुनाव में असल मुद्दे क्या हैं और वहां किस तरह के समीकरण हैं, जानने के लिए BBC संवाददाता कुलदीप मिश्र ने सोलापुर में राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश पवार से बात की।
महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र एंटी दिल्ली ये आइडियोलॉजी वर्कआउट कर रहा है और ये NCP के लिए बहुत फायदेमंद लगती है। कांग्रेस तो महाराष्ट्र में पूरा पार्टी स्ट्रक्चर और जो इशू है वो कहीं भी दिख नहीं रहा है, सिर्फ एनसीपी के साथ कांग्रेस ऐसा लग रहा है। शिवसेना का भी ऐसा ही हुआ है कि शिवसेना अपना जो मराठी सन ऑफ सॉइल का इश्यू उठा रही थी वो भी खत्म हो गया है और जो बीजेपी कहती है वही शिवसेना कहने लगी है। और भाजपा का सबसे बड़ा इश्यू इस समय ये है कि राज्य में देवेंद्र फडणवीस होंगे और हर एक जिले में उनके अंडर काम करेंगे मराठा लीडरशिप, और जो कुछ समूह माइनॉरिटीज है वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाए अगर राज्य के साथ तड़जोड़ करने चाहती है।
क्या आपको लगता है इस चुनाव में या पिछले कुछ सालों में जो मराठाओं का प्रभुत्व था वो थोड़ा कम हुआ है?
महाराष्ट्र के में राजनीति में मराठों का प्रभुत्व कम हो गया है। पहला कारण ये है कि मराठों की लोकसंख्या 32% थी ऐसा बोला जाता था, लेकिन उतनी नहीं है। मराठों की पॉपुलेशन सिर्फ 20% है और 20% का डिवाइडेशन 5 गट में हो गया है, यानी कि शिवसेना के साथ मराठा है, बीजेपी के साथ मराठा है, एनसीपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है और एक गट इंडिपेंडेंट है। दूसरा कारण ये है मराठा बहुजन आइडियोलॉजी के नीचे काम करता था, लेकिन अभी मराठों ने बहुजन आइडियोलॉजी छोड़ दी है और मराठा इधर का हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अंडर काम कर रहा है। और थर्ड जो मुझे सबसे बड़ा इशू लगता है वो ये है कि अर्बन और रूरल में मराठा रूरल में है और रूरल पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत डाउन है महाराष्ट्र में, अर्बन इकोनॉमी बहुत आगे चली गई है, इसलिए मराठों का पॉलिटिकल इकोनॉमी काम नहीं कर रहा है।
महाराष्ट्र की राजनीति का विश्लेषण कर रहे थे प्रकाश पवार। बात हरियाणा की, जहां बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा राज्य की चुनावी फिजा का जायजा ले रहे हैं। कुलदीप मिश्र ने अरविंद छाबड़ा से बात की और वहां के चुनावी रंग क्या हैं ये जानने की कोशिश की।
देखिए, हरियाणा में जो भाजपा है इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने 10 की 10 सीटें जीती हैं, वही माहौल आज भी बना हुआ है उनका ये कहना है, ताकि लोगों के मन में वो याद रहे वही इशू, जैसे नेशनल सिक्योरिटी को लेके, कश्मीर के 370 को लेके वो जो है लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें, इनेलो की बात करें, आईएनएलडी जो चौटाला की पार्टी है, जेजेपी की जो बात करें, वो भी जननायक जनता पार्टी है जो चौटाला के दूसरे पुत्र की पार्टी है, उनका ये कहना है कि इस बार के जो मुद्दे हैं वो राज्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ताकि लोगों के दिमाग से लोकसभा की जो शिकस्त मिली थी बाकी सभी पार्टियों को, वो उस तरह की वोटिंग इस पर ना हो। पिछले 2-1 दिनों में करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र के इलाकों का दौरा करता आ रहा हूँ। करनाल में पहले मैं ये बता दूं कि पिछली बार 2014 में एक मुख्यमंत्री खट्टर पहली बार चुनाव जीते थे और उन्होंने कांग्रेस के जयप्रकाश गुप्ता को हराया था। इस बार जननायक जनता पार्टी के तेज बहादुर यादव जो बीएसएफ के जवान थे, आपको याद होगा उन्होंने जो वीडियो बनाया था उसके बाद उनको एक्शन कार्रवाई फेस करनी पड़ी थी बीएसएफ की, वो इस जेजेपी के कैंडिडेट हैं। इनेलो ने तो कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं खड़ा किया है, जो मुख्य मुकाबला होगा वो मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस और जेजेपी ऐसा नजर आ रहा है कि होने वाला है।
मनोहर लाल खट्टर के लिए क्या जाट समाज के बीच स्वीकृति का संकट इस चुनाव में भी है?
जी देखिए, मनोहर लाल खट्टर एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो हम लगातार ये देख रहे हैं कि वो आज की बात कम करना चाहते हैं डायरेक्टली, ताकि वो जाटों का कम से कम वोटों का नुकसान ना हो। हालांकि सब जानते हैं कि वो एक नॉन जाट नेता है और जाट उन्हें पसंद नहीं करते हैं, जिस तरीके से जाट एजिटेशन हुआ था 2016 में, उसके बाद वायलेंस हुई थी उसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम भी काफी खराब हुआ था, लेकिन वो सीधे तौर पर इस तरीके की जो पब्लिक रैली में कम से कम इस तरीके की बात करने से अवॉइड करते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नॉन ऐसे जिस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे कि नॉन जाट जो है उनको एक साइड पर एक तरह से इकट्ठा कर लिया है जाटों के खिलाफ, इस तरह की जो बात की जाती है।
करनाल हरियाणा से ये थे बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
अंग्रेजी का ओ और गणित का शून्य यानी जीरो किसानों का गुणा भाग किस तरह गड़बड़ा सकता है, उसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में देखने को मिला। इन दो अक्षरों की वजह से, हेरफेर की वजह से, इस जिले में हजारों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम नहीं मिल पा रही है। ज्यादा जानकारी रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किसान अंग्रेजी के ओ से परेशान हैं। वे चाहते हैं कि इस ओ को जल्दी से जल्दी शून्य में बदल दिया जाए। असल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में साल भर में किसानों को 6,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इस जिले के 86,000 से अधिक किसान इस योजना के लिए पंजीकृत हैं, लेकिन इस योजना की तीसरी किश्त केवल 550 किसानों को ही मिल पाई। जिले के सहकारी बैंक से जुड़े किसान जब बैंक पहुंचे तो पता चला कि बैंक में ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करने के लिए जो IFSC कोड दिया जाता है, शून्य की जगह ओ दर्ज कर दिया गया और किसानों के खाते में रकम जमा ही नहीं हुई। शून्य की जगह ओ दर्ज किए जाने से परेशान महासमुंद के किसान जागेश्वर चंद्राकर कहते हैं,
अगर अपन किसी जगह में टाइप करेंगे जीरो रो को तो जीरो रो सेम दिखता है। डेटा में अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो जीरो रो का मामला को तो तुरंत सुलझा सकते हैं सामने वालों।
महासमुंद जिले में सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी डोंगरलाल नायक का कहना है कि शून्य की जगह ओ की गड़बड़ी कैसे हुई, इसे संबंधित इलाकों के दस्तावेज में देखना होगा।
पहले ये पता करें कि उन्होंने जो आवेदन भरा था उसमें सही लिखे हैं कि नहीं।
लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी का आरोप है कि राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए शून्य की जगह ओ का उपयोग किया है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समय समय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर सवाल उठाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों का आंकड़ा बताता है कि हर किश्त के साथ किसानों की संख्या तेजी से घटी है। ऐसे में शून्य और ओ जैसे अक्षरों की गड़बड़ी ने किसानों को और परेशानी में डाल दिया है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और आइए एक नजर दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। कमलेश तैयार हैं।
आज के अखबारों में, लगभग सभी अखबारों में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मामल्लपुरम में मुलाकात की खबरें हैं। और अखबारों में जो है किसी में उनकी तस्वीरें दी गई हैं, जैसे जिसमें शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री बातें कर रहे हैं या साथ में नारियल पानी पी रहे हैं। इसके अलावा चाय पीते भी उनकी तस्वीर है हिंदुस्तान अखबार में। और एक पुरानी तस्वीर भी डाली गई है हिंदुस्तान अखबार में, जब वो गुजरात में झूला झूलते हुए उनकी एक तस्वीर थी। और अखबारों में जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने जो हेडिंग दी है कि पहला दिन मोदी और शी के बीच में व्यापार, आतंक और कट्टरवाद के खतरे को लेकर बातचीत हुई। और पहला दिन उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि आज भी दोनों नेता मिलेंगे और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। जनसत्ता ने लिखा है फासले मिटाने की कवायद, जो कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच में जो टकराव देखने को मिला था उसको लेकर यह हेडिंग दी गई है। हिंदुस्तान ने लिखा है मोदी जिनपिंग में आतंक और व्यापार पर घंटों चर्चा। इसके अलावा जनसत्ता में एक खबर है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती से जुड़ा एक और आंकड़ा सामने आया है। अगस्त महीने में औद्योगिक उत्पादन 1.1% घट गया है। अगस्त का औद्योगिक उत्पादन पिछले 81 महीनों में सबसे कम है और जुलाई 2017 के बाद पहली बार इसमें गिरावट देखी गई है। इसकी वजह है विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आंकड़े दिए हैं कि विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 1.2% घटा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ही एक खबर है कि महाराष्ट्र के वर्धा विश्वविद्यालय में धरना आयोजित करने वाले और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने वाले 6 छात्रों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है। ये छात्र मॉब लिंचिंग और रेप के आरोपी नेताओं को बचाने के खिलाफ धरना दे रहे थे। कार्यवाहक रजिस्ट्रार के आदेश में लिखा है कि छात्रों को धरना आयोजित करके 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के उल्लंघन और कानूनी प्रक्रिया में दखल देने के चलते निकाला गया है। इसी अखबार में एक खबर और है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक स्कूल शिक्षक बंधु प्रकाश पाल, उनकी गर्भवती पत्नी और 8 साल के पुत्र की हत्या के मामले में जो राजनीति हुई थी उसमें अब उनके परिवार का कहना है कि बंधु प्रकाश पाल का किसी राजनीतिक पार्टी और संगठन से कोई संबंध नहीं है।
अखबारों की सुर्खियां बता रही थी कमलेश मठेनी।
BBC इंडिया बोल।
देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती की गिरफ्त में है, इस वजह से बेरोजगारी का संकट और गहरा सकता है। आखिर कैसे सुधरेगी हालत? इस शनिवार 12 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में होगी चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त कॉल करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अपनी दमदार आवाज और अभिनय के दम पर दर्शकों को दीवाना बनाने वाले अमिताभ बच्चन ने अभिनय की दुनिया के हर उस शिखर को छुआ है जिसकी वजह से उन्हें सदी का महानायक और बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। पिछले दिनों उन्हें इस साल के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन की 77वीं सालगिरह पर उनके जीवन के रोचक प्रसंगों पर रोशनी डाल रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
मिस्टर विजय, अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूं आपसे, ये बिल्डिंग आप महंगी ले गए। अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर देता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता।
धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता।
अच्छा, ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में?
आज से 20 बरस पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ।
ये एक विडंबना थी कि अपनी डायलॉग डिलीवरी से पूरे भारत को दीवाना बनाने वाले अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन में असफल घोषित किए गए थे। ये भी एक दिलचस्प तथ्य है कि अपनी शुरुआती फिल्म रेशमा और शेरा में सुनील दत्त ने उन्हें एक गूंगे का रोल दिया था। अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म साथ हिंदुस्तानी में उन्हें एक मुस्लिम युवा का रोल दिया, वो भी उनके पिता हरिवंश राय बच्चन से पूछकर। योजना आयोग की पूर्व सदस्य और मशहूर लेखिका डॉक्टर सैयदा सैयदीन हमीद बताती हैं।
6 हिंदुस्तानी तो उनको मिल गए थे, अब 7वें की उनकी तलाश थी। तो इनका एक यंग असिस्टेंट था इंदर राज आनंद का बेटा, तो वो उन्होंने कहा मामू जान मैं लेके आता हूँ, मेरा एक दोस्त है। तो ये अमिताभ बच्चन को लेके आए। अच्छा तो तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरा नाम अमिताभ है। पूरा नाम क्या? उसने कहा अमिताभ बच्चन। तो कहे कहीं तो मेरे दोस्त हरिवंश राय बच्चन के तो बेटे नहीं हो? उसने कहा जी, बाप की मर्जी से आए हो? उसने कहा जी, मालूम है पेरेंट्स को? उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले उनको लिखूंगा। तो फिर उन्होंने इनको हरिवंश राय जी को ख़त लिखा कि ऐसा ऐसा है, आप अगर इजाज़त दें। तो उन्होंने फिर तार से उनको जवाब दिया कि अगर आपके साथ काम कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते थे? उसने कहा मैं 1500 रुपये पे बैंड बॉक्स में कलकत्ते में करता था। मतलब अब नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं, मैं छोड़ के आ गया। अरे तुम छोड़ के आ गए, तुम्हें तो मैं पूरी फिल्म का सिर्फ 5000 दे सकता हूँ, मेरे पास इतना ही पैसा है। उन्होंने कहा आप मामू जान, आप जो भी दें मैं तैयार हूँ।
आगे की घटनाएं इतिहास हैं। अमिताभ बच्चन अब्बास के इस जेस्चर को कभी नहीं भूले। बाद में उन्होंने एक जगह 7 हिंदुस्तानी की शूटिंग को याद करते हुए कहा
कि ऐसी सोच थी कि जिस तरह से ये सेनानी लड़े होंगे उसी तरह हम लोग इस फिल्म को भी बनाएंगे। तो हम लोग सब यहाँ मुंबई के रेलवे स्टेशन से गाड़ी में गए शूटिंग करने गोवा। वहाँ पर जब भी अवसर मिला पैदल चलते थे हम लोग, अपना सामान वामान ढो करके। रहने के कोई होटल नहीं होता था, जहाँ सर्किट हाउस छोटे छोटे होते थे, जहाँ बिजली पानी वगैरह नहीं होता था, वहाँ पर हम लोग रहते थे। कई बार मैं रात को जब सो रहा होता था तो नींद उठती थी तो देखता था कि अब्बास साहब भी वहीं बगल में ही ज़मीन पर ही लेटे हुए हैं। और क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो लालटेन लेकर के काम किया करते थे अगले दिन की डायलॉग्स लिखने के लिए।
लेकिन व्यावसायिक सफलता के लिए अमिताभ को 16 और फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। ये सफलता उन्हें जंजीर फिल्म में जाकर मिली। हाल ही में अमिताभ बच्चन की जीवनी अमिताभ बच्चन अ कलाइडोस्कोप लिखने वाले मशहूर पत्रकार प्रदीप चंद्रा बताते हैं।
अगर आपको 16 फिल्मों तक काम मिलता रहा इसका मतलब आपने अपनी जगह ऑलरेडी बना ली थी। अगर न बनाई होती तो 3 फिल्मों के बाद आपको कोई नहीं पूछता। कभी कभी क्या होता है कि समय भी ऐसा होता है आपका साथ देता है। ऐसा स्क्रिप्ट जिसको देवानंद रिफ्यूज कर दिया, राजकुमार ने रिजेक्ट कर दिया, धर्मेंद्र ने रिजेक्ट कर दिया। सोचिए इतना स्ट्रांग फिल्म जिसमें इतनी बड़ी हिट जो फिल्म हुई उसको इतने बड़े बड़े एक्टरों ने नकार दिया। इससे पता चलता है कि बच्चन जी जब कोई स्क्रिप्ट देखते थे या पढ़ते थे तो तो फिर भी उनके मन में होता था कि भाई इसमें हो सकता है कि मैं जो है बाजी पलट दूं, और वो हुआ भी।
तुम्हारा नाम शेर खान है?
इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर अब मुलाकात हो गई।
जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने पुराने दोस्त राजीव गांधी के अनुरोध पर राजनीति में प्रवेश किया और इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका मुकाबला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा से। उस चुनाव को कवर करने वाली और द मैरी गोल्ड स्टोरी की लेखिका कुमकुम चड्ढा याद करती हैं।
पहले तो वो अपना रोल स्विच नहीं कर सके। He kept thinking that he is a film star contesting an election. तो वो कभी एक political level पर आए ही नहीं। दूसरा, वो सर्किट हाउस में बंद कमरों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और अजिताभ उनके जो भाई हैं जिनके साथ वो बाद में फॉल थ्रू किए, अजिताभ आते थे, उनका रोल ये होता था कि लोगों को भगाना। तो सर्किट हाउस का गेट बंद रहता था, अमिताभ के कमरे का दरवाज़ा बंद रहता था, और वो जो बीच का ड्राइववे था वहाँ अजिताभ आकर हर रोज़ सुबह, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, चाहे लोग हों, क्योंकि लोग भी थे, चाहे वो वोटर्स हों, उन सबको भगाने का काम अजिताभ करते थे। एज अगेंस्ट दैट, बहुगुणा जी के आप घर पर जाएँ तो आपको वेलकम किया जाता था, बहुगुणा जी सबसे मिलते थे, तो एक बहुत शार्प कॉन्ट्रास्ट था। उनकी रटी रटाई 5 या 6 सेंटेंसेस होते थे, और हर रैली में वो वही लाइंस बोलते थे और उसी अंदाज में बोलते थे। तो उनको न्यूएंसेस इलेक्शन की समझ नहीं आई, हीट एंड डस्ट का उनको बिल्कुल वो नहीं था। और ये मैंने बाद में लिखा भी था कि अगर इलेक्शन ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल हार रहे थे, देयर इज नो क्वेश्चन, और अगर ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो जया की वजह से, क्योंकि शी केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स। तो वो भाभी, देवर, मुंह दिखाई वाले, वो जितने भी वाक्याए थे वो सब तब हुए।
लेकिन राजनीति में अमिताभ बहुत अधिक दिनों तक नहीं रह पाए। वो फोर्स घोटाले में नाम आने पर उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 70 के दशक के मध्यकाल और पूरे 80 के दशक में अमिताभ की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। कहा जाता था कि बच्चन की फ्लॉप फिल्में भी दूसरी हिट फिल्मों से अधिक व्यवसाय करती थी। 1991 में टाइम पत्रिका ने बच्चन के लिए एक वाक्य लिखा था कि बॉलीवुड में 1 से लेकर 10 स्थानों तक सिर्फ बच्चन ही काबिज है। बच्चन के जीवनीकार प्रदीप चंद्रा बताते हैं।
बच्चन जी में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात यह थी कि उनका पूरा लुक जो था बहुत एलिगेंट था। अगर बच्चन जी सूट पहने और कोई और एक्टर पहने, उनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, उनका सेंस ऑफ टॉकिंग, उनकी भाषा, मेरी जावेद अख्तर से बात हो रही थी, जावेद साहब ने बताया कि भाई इनकी जो पंक्चुअलिटी और जिस तरह से इनका जो बिहेवियर ये सब था, उसने इनको जो है बहुत फायदा दिया। क्योंकि उसके पहले तो फिल्मों का ये था कि भैया एक्टर 12 बजे का दो बोलो तो 4 बजे आएंगे, उसके बाद किसी के कोई नशे में आ रहे हैं, कोई अपना चमचों का ट्वीड लेके आ रहा है, ये 7 बजे का शिफ्ट होगा तो ये 6:30 बजे जाके अपनी कार में बैठ जाएंगे।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें पुनः कमलेश मठेनी से।
BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उत्तर सीरिया में तुर्की के हमले के बाद करीब 1,00,000 लोग पलायन कर चुके हैं। कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमला तेज होने से कई इलाकों में हालात और बिगड़ गए हैं। अमरीका ने चीन के साथ एक आंशिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अमरीका चीन के उत्पादों पर टैरिफ वृद्धि को फिलहाल स्थगित कर देगा। अमरीका ने सऊदी अरब की मदद के लिए 1,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की घोषणा की है। सऊदी अरब में पिछले महीने तेल कंपनी अरामको पर हुए हमले को देखते हुए ये सैन्य मदद भेजी जा रही है। फेसबुक की नई वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बनाने की परियोजना से 4 बड़ी ऑनलाइन भुगतान कंपनियां अलग हो गई हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान और अगला प्रसारण दिन भर आज होगा बीबीसी इंडिया बोल। रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।